नमस्कार, मैं रविश कुमार। देश ने टॉपिक बदल लिया है, सेना की जगह शिवसेना आ गई है। शिवसेना रहेगी या टूट जाएगी, इसे लेकर खबरें आज दिल्ली, मुंबई और सूरत के बीच भागती दौड़ती रहीं। जो देश एक दिन पहले अग्निवीरों की गिनती में लगा था कि 4 साल बाद सेना में कितने रखे जाएंगे और कितने निकाल दिए जाएंगे, वह देश महाराष्ट्र में विधायकों को गिनने लग गया कि शिवसेना एनसीपी के कितने विधायक बीजेपी में चले जाएंगे या अलग पार्टी बना लेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक आज सुबह नॉट रिचेबल हो गए, उनका फोन बंद हो गया। खबरें आने लगी कि शिवसेना के कई सारे विधायक सूरत में हैं। अपनी पार्टी से संपर्क तोड़कर भी विधायक 5 स्टार ही जाते हैं ताकि किसी और के लिए संपर्क करना मुश्किल ना हो। यहीं पर ठहरे हैं महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री और शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे। इस तरह से देश में छाया सेना का टॉपिक पीछे जाता है, शिवसेना का टॉपिक आगे आता है। बात हो रही थी कि अग्निवीर से सेना कमजोर हो सकती है और टूटने लगी शिवसेना। गिनती होने लगी कि शिंदे के साथ कौन कौन है, कितने विधायक हैं। आज की कहानी के किरदार का नाम एकनाथ संभाजी शिंदे। हम भी सारा काम छोड़कर इनके बारे में जानने लग गए तो 19 जून की यह तस्वीर मिली। 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मंच पर बैठे शिवसेना की 56वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर ट्वीट कर शिव सैनिकों को मनपूर्वक बधाई दे रहे हैं। उससे पहले 16 जून को आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाते हैं और साथ साथ आरती करते हैं। इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हैं। 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन मनाते हैं। क्या 13, 16 और 19 जून को उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, किसी को भनक नहीं लगी कि 21 जून को एकनाथ से संपर्क टूटने वाला है? उन्हें आंख दिखाने लगेंगे एकनाथ? एक साल पहले 22 अगस्त को मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे का बयान छपा है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना में दिक्कत हो रही है, अगर आना चाहे तो बीजेपी में शामिल कराऊंगा। एकनाथ शिंदे उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि नारायण राणे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं शिवसेना में काफी खुश हूं। आज नारायण राणे ने ट्वीट किया कि शाबाश एकनाथ जी, आपने सही समय पर सही फैसला लिया। 4 बार विधायक बनने से पहले एकनाथ ऑटो रिक्शा चलाते थे, अब तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद भी हैं। शिंदे की बगावत के पीछे कौन है, बगावत के पीछे कब से काम चल रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मगर सूरत के ले मेरिडियन होटल में देखकर आप संतोष कर सकते हैं कि शिवसेना के बागी अच्छी जगह गए हैं। इसी अच्छी जगह से एकनाथ शिंदे ने विधायक दल के नेता पद से हटाने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से शिवसेना का नाम हटा दिया और कहा कि हम ही असली शिवसेना हैं। उस वक्त एकनाथ शिंदे ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी देंगे। इस ट्वीट के बाद ही लग गया कि वे जल्दी ही भारी भरकम नैतिक स्टैंड लेने वाले हैं, जिससे भारतीय राजनीति की सारी नैतिकताएं लजाकर बुलबुला हो जाएंगी। अगर ये धोखा नहीं तो फिर मित्रता क्या है, आप बहस कर सकते हैं। वैसे इसके बाद भी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को एक मौका दिया, पार्टी के विधायकों के साथ सूरत चले गए। क्या ये धोखा नहीं? क्या इस 5 स्टार में दोस्ती निभाने के लिए गए हैं? शाम के वक्त शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक सूरत के इस ले मेरिडियन होटल पहुंचते हैं। तब एकनाथ ने बातचीत के लिए उन्हें अंदर बुला लिया। अब गिनती होने लगी कि एकनाथ मानेंगे, शिवसेना में लौटेंगे या नहीं। 2 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद मिलिंद नार्वेकर ने कुछ नहीं कहा। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे।
गुजरात का सूरत इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है और केंद्र बना है यहाँ का ली मेरिडियन होटल, जो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, जिसे इस वक्त किले में तब्दील कर दिया गया है। अंदर हैं एकनाथ शिंदे, जो बागी विधायक हैं, बागी नेता मंत्री कह लीजिए, सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे शिवसेना के एकनाथ शिंदे। उनके साथ उनके समर्थक विधायक हैं, जिनकी संख्या 20 से ज्यादा बनाई जा रही है और दिन भर यहां पर इनको एकनाथ शिंदे को मनाने का सिलसिला चलता रहा। सुबह खबर आई कि यहां 12 विधायक हैं और शाम होते होते ये खबर पुख्ता होने लगी कि यहां पर 20 से ज्यादा विधायक शिवसेना के पहुंच चुके हैं। यहां पर शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनके दो खास मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को यहां भेजा गया एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, और कहा गया कि लगभग 2 घंटे तक उनकी बैठक चली। हम यहीं पर मौजूद थे और उस बैठक के दौरान फाटक और नार्वेकर ने अपने फोन से एकनाथ शिंदे की बात उद्धव ठाकरे से कराई और रश्मि ठाकरे से कराई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि वो शिवसेना वापस नहीं आ रहे हैं और शिवसेना या उद्धव ठाकरे विचार करें कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए और सरकार चलाई जाए। अब अगला स्टेप क्या होगा एकनाथ शिंदे का? एकनाथ शिंदे, खबर ये भी है कि अमित शाह से मिलने जाएंगे कल या देर रात। अमित शाह और यहां पर देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो दिल्ली में हैं। दोनों अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस यहां आएंगे गुजरात अहमदाबाद, यहां से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर के अमित शाह से मिलेंगे। ये सब चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी भी इस समय शांत है, मॉनिटर कर रही है क्योंकि साथ बीजेपी का है पूरा। यही वजह है कि पूरा गुजरात पुलिस की प्रोटेक्शन में एकनाथ शिंदे अंदर लिमेरिडियन होटल में है और यहां पर उनकी सुरक्षा में गुजरात पुलिस लगी हुई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से निकलकर वो बीजेपी शासित गुजरात में आए हैं। वहीं वहां पर शिवसेना की भी कोशिश है कि जो और विधायक साथ में हैं, एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे तो विधायकों को साथ में मनाया जाए। 3 विधायक मुंबई के 5-स्टार होटल से उद्धव ठाकरे से के पास उनको ले जाया गया। तो काफी चर्चाएं हो रही हैं। एकनाथ शिंदे मजबूत नेता माने जाते हैं। सूरत के लिमेरिडियन होटल में इस वक्त दोपहर से ही बीजेपी के एक विधायक संजय कुठे, जो देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी बताए जाते हैं, वो अंदर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वही एक संदेश वाहक के तौर पर एकनाथ शिंदे के संदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप को पहुंचा रहे हैं। जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जो संदेश आ रहा है वो एकनाथ शिंदे को पहुंचा रहे हैं। तो कल की का सूरज क्या नया लेकर के आएगा सूरत से महाराष्ट्र की राजनीति में, ये काफी देखना अहम होगा। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया शिवसेना वापसी का सवाल नहीं, बीजेपी के साथ जाएंगे लेकिन कितने विधायक लेके जाएंगे, क्या पूरी पार्टी तोड़ पाएंगे, क्या पार्टी का जो 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 लगभग 70% विधायक या 60% से ज्यादा विधायक अपने साथ ले जाएंगे, ये देखना होगा। शिवसेना भी कोशिश करे विधायकों को रोका जाए, एकनाथ शिंदे नहीं मानते हैं। वहीं बीजेपी चुपचाप एकनाथ शिंदे के साथ बैक चैनल से टॉक कर रही है, सामने तभी आएगी जब एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल होगा।
हम इस कहानी को इसी मोड़ पर छोड़ना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं फ्लैशबैक में। सरकारें पहले भी गिरती रही हैं, गिराई जाती रही हैं, लेकिन 2014 के बाद से गिरी और गिराई गई सरकारों की कहानी पर सरसरी नजर डाल लीजिए। उन सभी घटनाओं में दल बदल की एक अज्ञात आत्मा इस दल से निकलकर उस दल में प्रवेश करती है और जिसकी भी सरकार गिरती है ज्यादातर मामलों में बनती बीजेपी की ही है। 21 मार्च 2020 की यह तस्वीर है, तब दल बदल की आत्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया में प्रवेश कर गई। कांग्रेस नेता अपने साथ 21 विधायकों को लेकर निकल गए और अचानक बीजेपी के नेताओं के साथ प्रकट हो गए। कमलनाथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री। इसी तरह 2016 में उत्तराखंड में हरक सिंह रावत समेत 10 तत्कालीन कांग्रेस नेताओं में दल बदल की आत्मा प्रवेश कर गई, कांग्रेस की हरीश रावत की सरकार गिर गई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को अवैध करार दिया। इसी तरह से 26 जनवरी 2015 की पूर्व संध्या पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को गलत माना। दो दो बार मोदी सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया। उसी तरह तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने वाले मुकुल रॉय पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही, उन्हें बीजेपी में ले आई, अब फिर से वे तृणमूल में चले गए। 2019 में दल बदल की आत्मा कर्नाटक के कांग्रेस जेडीएस के 16 विधायकों में प्रवेश करती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। आप भूल गए होंगे आम आदमी पार्टी की 2015 में सरकार बनी, उसके 20 से अधिक विधायकों पर लाभ के पद का लंबा मामला चला, हर दिन चैनलों पर ग्राफिक चलते थे कि इनकी सदस्यता रद्द होगी और सरकार गिरेगी। आम आदमी पार्टी यह तूफान झेल गई। हिंदुत्व की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, शिवसेना ने बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती दी है। इस लड़ाई की बुनियाद 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय पड़ गई। महाराष्ट्र में 35 सालों से दोस्त रहे शिवसेना को विपक्ष में बैठना पड़ा। सितंबर 2014 में अनंत गीते मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं। अब बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ते हैं। शिवसेना को आश्वासन मिलता है कि राज्य की सरकार में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत मोदी सरकार में मंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है, शिवसेना अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन बीजेपी से उसका सपना पूरा नहीं होता। नवंबर 2019 में अरविंद सावंत मोदी सरकार से इस्तीफा देते हैं। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाती है। इससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र की सरकार गिरते गिरते बची है। इसका श्रेय कभी शरद पवार को गया, कभी उद्धव ठाकरे को। क्या इस बार उद्धव ठाकरे अपनी सरकार, अपनी पार्टी को बिखरने से बचा सकते हैं? क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे? कहीं ये भगदड़ शिवसेना से होते हुए एनसीपी और कांग्रेस में तो पहुंचने वाली नहीं।
देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस मुख्यमंत्री।
महाराष्ट्र की राजनीति की यह क्लासिक तस्वीर है। उस समय उद्धव ठाकरे सरकार बनाने की तैयारी में थे। सुबह 8:11 पर यह तस्वीर ट्वीट होती है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और अजीत पवार उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री। मास्टर स्ट्रोक की ध्वनि गूंज उठती है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो गया, हंगामा मचता है। बीजेपी ने एनसीपी तोड़ दी, लेकिन तभी एनसीपी एक्शन में आती है, गेम पलटता है, अजीत पवार एनसीपी में आ जाते हैं। सोहित ने आज दोपहर यह तस्वीर भेजी। सरकार गिरने की खबरों के बीच अजीत पवार मंत्रालय में बैठक ले रहे थे। क्या इस बार भी उनकी कोई भूमिका होने वाली है? जबकि एनसीपी के विधायक भी नॉट रिचेबल हो गए। एक विधायक अजीत पवार शाम को उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी निवास स्थान वर्षा जाते हैं। क्या अजीत पवार शिवसेना में टूट और सरकार के गिरने से बचा सकते हैं? उधर दिल्ली में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल मिलते हैं। शरद पवार ने दिल्ली में कहा कि जो हो रहा है शिवसेना का आंतरिक मामला है, शाम को मुंबई जाएंगे।
पिछले 2-2.5 साल में जिसे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले जो हुए थे मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकलकर वो ऑफिस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और यहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो होटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहां किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इससे हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियां वहाँ आ गई, वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जेपी सीएम एनसीपी के पास है और इन्फॉर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इश्यू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चला है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं।
शरद पवार का बयान आता है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी साथ है। यह एक रूटीन सा बयान था या सरकार के बचने की उम्मीद जा चुकी थी, साथ रहने की ही बच गई थी? शिवसेना के टूटते ही महाराष्ट्र की सरकार का भी गिरना तय है, जिसमें एनसीपी पार्टनर है। बीजेपी उत्साहित है। राज्यसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव में अपने ज्यादा उम्मीदवार जिता लेने वाली बीजेपी को लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के मिलने की खबरें आने लगती हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता कैमरे के सामने आकर बयान नहीं देता है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का उस वक्त बयान आता है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं।
मैंने कहा था कि 10 तारीख का गुलाल मैंने बचा के रखा है,
वो बम
को 20 को यूज करेंगे।
शिंदे जैसा कद्दावर नेता शिवसेना का जाके गुजरात में जाके बैठ जाते हैं एक होटल में, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है, प्लानिंग
करना पड़ेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उनको पूछने के लिए, भाई क्या बात है, तो आपको पता चले तो मुझे बता देना।
अजीत पवार के साथ जब हुआ था तब यहीं पर रह गए थे, इसलिए होटलों में चूंकि शिवसेना की यूनियन थी तो वो मामला जो है कि फेल हो गया था, फ्लॉप हो गया, तो इस बार गुजरात चुना गया।
मुझे पहले मुझे समझो कि ये ऑपरेशन कोई हमारा ऑपरेशन नहीं है, जिनका है उनको ये सारे प्रश्न आपने पूछने पड़ेंगे।
अगर बीजेपी का रोल नहीं है तो क्या ईडी या अन्य जांच एजेंसियों का है? संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना के विधायक अनिल परब को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि ईडी अनिल परब से पहले भी पूछताछ कर चुकी थी। उधर बीजेपी के विधायक प्रवीण दारेकर देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में बयान देने लगे, सरकार बनाने की तरफ इशारा करने लगते हैं।
महाराष्ट्र अलग है तो महाराष्ट्र क्या उनकी जायदाद है क्या? हम कहां से आए? पाकिस्तान से आए हैं? महाराष्ट्र 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 में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोकप्रिय लीडर देवेंद्र फडणवीस है, तो महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है। हम भी महाराष्ट्र के, हमारा महाराष्ट्र है, और अढ़ाई साल में आप महाराष्ट्र की क्या बाट लगाई है वो महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो महाराष्ट्र की चिंता हमें है, आपको सत्ता की चिंता है।
शाम के 7 बजते बजते ये तस्वीर साफ होने लगी कि उद्धव ठाकरे हालात नहीं संभाल पाए हैं, उनके 5 राज्य मंत्री गायब हैं। क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? क्या मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला कि उनके इतने विधायकों को लेकर कोई सूरत चला गया है? विधान परिषद के नतीजे आने के बाद शिवसेना ने सभी विधायकों को पार्टी मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा, उसमें कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे नहीं आए। हमारे सहयोगी सोहित मिश्र का कहना है कि सोमवार दोपहर के वक्त एकनाथ विधानसभा में अकेले दिखे, उसके बाद किसी को नजर नहीं आए। महाराष्ट्र जैसे राज्य के मंत्री और विधायक सूरत पहुंच जाएं और राज्य सरकार को उसी वक्त पता ना चले, यकीन करना मुश्किल है। मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री निवास में शिवसेना के विधायकों की बैठक बुलाई गई, फिर सांसदों की बुलाई गई, लेकिन कई विधायकों के सूरत में होने की खबर आती रही। संजय राउत को इस वक्त तक उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे लौट आएंगे, वे सच्चे शिव सैनिक हैं।
जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है, सूरत में है मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहां वापस आ जाएंगे।
संजय राउत का यह भरोसा कि एकनाथ शिंदे बाला साहब के सैनिक हैं वैसा ही है जैसे भावी अग्निवीरों को भरोसा नहीं हो रहा कि वे सैनिक हैं। 2.5 साल में महाराष्ट्र की सरकार गिराने का हंगामा पहले भी मच चुका है, कभी छापे के बहाने, कभी गिरफ्तारी के बहाने। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे नवाब मलिक 23 फरवरी से जेल में हैं। नवाब मलिक एनसीपी से विधायक हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में नवाब मलिक ने केंद्रीय एजेंसियों को खूब घेरा था, आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन नवाब मलिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में जेल चले गए। एनसीपी के कोटे से गृहमंत्री अनिल देशमुख भी कई महीनों से जेल में हैं, उन पर भी 100 करोड़ की वसूली का आरोप है। इन दो मामलों के वक्त भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरी, जबकि बताई जा रही थी कि गिर जाएगी। दिन दोपहर से शाम की तरफ बढ़ने लगा, समझ में आने लगा कि सरकार गिर रही है, मगर आज ही गिरेगी और अभी ही गिर जाएगी पक्का नहीं हो रहा था। बचाने की कोशिशें शुरू हो गई थी लेकिन बच जाएगी यह भी पक्का नहीं हो रहा था। सोहित मिश्रा मुख्यमंत्री निवास वर्षा के बाहर मौजूद रहे, वहीं से रिपोर्टिंग करते रहे।
दोपहर के 2 बज गए हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार के भविष्य को लेकर अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 बजे भी बैठकों का सिलसिला जारी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वर्षा बंगला है, यही आधिकारिक बंगला है, औपचारिक बंगला है मुख्यमंत्री का, और यहाँ पर शिवसेना के कई विधायक पहुंचे हुए हैं। इस बीच दिन भर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा, शिवसेना की ओर से भी बैठक की गई, एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाया गया, कई सारी तैयारियां शिवसेना की ओर से की जा रही हैं। उन्हें पार्टी से नहीं बल्कि शिवसेना के जो विधायक दल के नेता के पद से हटाया गया है वो इसलिए किया गया ताकि जब अगर सोचिए वोटिंग भी होती है तो जो विधायक दल का नेता होता है वो एक व्हिप जारी करता है कि वोट किसे देना है, वो एकनाथ शिंदे ना कर सके इसलिए ये किया गया। इस बार एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र के बाहर सूरत जाने का मतलब ही यही है कि वो किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचते दिख रहे हैं। वो महाराष्ट्र के किसी होटल में भी रुक सकते थे, मुंबई के किसी होटल में भी रुक सकते थे। आज तो शिवसेना के 3 विधायक मुंबई के एक होटल में रुके हुए थे, उन्हें वहां से पकड़कर आज वर्षा बंगले में लाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप रुकेंगे तो शिवसेना की इतनी ताकत है कि आपको वहां से उठाकर आपको बंगले में लाया जा सकता है। अब जब ये बैठक खत्म होगी जो अभी चल रही है, मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार की बैठक, तब एक बैठक बुलाई गई है जहां पर शिवसेना के सांसद मौजूद होंगे। इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की उम्मीद लगाया जा रहा है कि वो करीबन 8-8:30 बजे के करीब वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचेंगे। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं अभी, उसे देखते हुए ये नहीं लगता कि अभी फिलहाल कुछ कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का भविष्य क्या है, महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे का क्या भविष्य है। फिलहाल शिवसेना के 2 ऐसे नेता सूरत भी पहुंचे थे, एक है मिलिंद नार्वेकर और साथ ही साथ रविंद्र फाटक। मिलिंद नार्वेकर एक उद्धव ठाकरे के पीए हैं और साथ ही रविंद्र फाटक एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं। दोनों ने उनसे बातचीत कर उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने वहां पर, मिलिंद नार्वेकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात करवाई, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। अब आपको इसमें यह भी समझना है कि एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया था, एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर लिखा था कि वो बाला साहेब ठाकरे के पार्टी से आते हैं और वो उनके कट्टर समर्थक हैं, साथ ही साथ वो आनंद दीघे जो थाने के एक बड़े शिवसेना के नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो उनके फॉलोअर हैं और उनके लिए सत्ता का कोई महत्व नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। एकनाथ शिंदे नाराज क्यों है? एकनाथ शिंदे पिछले 2.5 साल से नाराज चल रहे हैं। दरअसल अगर ठाकरे परिवार को आप छोड़ दें तो शिवसेना में वो सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कहना है कि उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उनकी ताकत जो थी या उनके जो पावर्स थे उसको कम करने की कोशिश की गई और उनके सामने दूसरे लोगों को बड़ा करने की कोशिश की गई। ऐसी बात नहीं है कि ये शिवसेना को पता नहीं था, लेकिन 2.5 साल तक उस पर कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे अपने कई विधायकों को लेकर सूरत में मौजूद हैं। ये आप देखिए किस समय हो रहा है, जब जो मुख्यमंत्री है वो खुद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवसेना पक्ष प्रमुख और खुद उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना के पास अपने ही विधायक महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है। ऐसे में खतरे की घंटी जरूर बरकरार है, लेकिन अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। हर कोई वेट एंड वॉच पर है, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो। तो 2019 में जिस तरह से हमने देखा था, अजीत पवार जब चले गए थे, 3 दिन की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार बन गई थी, लेकिन 2022 में क्या कुछ होता है इस पर नजर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
एक तरफ शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे से सूरत में बात करने लगते हैं, तो शाम 6 बजे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी HK पाटिल का बयान आता है कि सुबह जैसी स्थिति नहीं है। क्या वाकई स्थिति संभल गई थी?
हमारा तो 44 है, 44 में हमारा थोड़ा फूटा है, CLP लीडर भी बोला है एंड मैं भी वो बात कबूल करता हूं। ये इंट्रोस्पेक्शन की घड़ी है। हमारा 44 है, हमारा वन कैंडिडेट, हमारा एक अभ्यर्थी 22 लिया है और दूसरा अभ्यर्थी 19 लिया है, फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिलके कितना हुआ? 41 हुआ। ये 41 में 44 में 3 जो फूटा है उसको भी हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा।
कांग्रेस अपना घर संभाल लेने का दावा कर रही है या सरकार बचा लेने का? क्या उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना को टूटने से बचा लिया है? उद्धव को सरकार भी बचानी है और यह भी साबित करना है कि वही शिवसेना के सर्वमान्य नेता हैं। इस घटना से साफ हो गया है कि जो कोई भी पर्दे के पीछे से यह खेल रच रहा है, उसकी दिलचस्पी केवल सरकार गिराने में नहीं है, बल्कि उसकी दिलचस्पी शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के इकबाल को खत्म कर देने में है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के दम पर कई मौकों पर सरकार बचा ले गए, लेकिन आज सरकार के साथ साथ पार्टी भी दांव पर है। बाला साहब ठाकरे के बाद हर तरह की चुनौतियों से निकालकर पार्टी को यहां तक ले आए, मगर अब सत्ता के साथ साथ पार्टी हाथ से जाती नजर आ रही है। क्या इस बार उद्धव ठाकरे सरकार और पार्टी बचा लेंगे? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं। उनका एक बयान है, जब रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे तब भगवान राम का नाम लेकर क्या होगा। अगर शिवसेना टूट गई, सरकार गिरी, तो उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से पद छोड़ना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री स्तर के नेता के स्वाभिमान के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या उद्धव इस बार भी बचा लेंगे, या बचा भी लेंगे तो कब तक बचा लेंगे?
सध्या जो काही सगळा खेळ चालू आहे, वाटेल ते करायचं, पण मला सत्ता पाहिजे। व्यसनाधीनता जी हा जो एक प्रकार आहे, अंमली पदार्थ हा एक वेगळा भाग झाला, त्याचं तर नायनाट केलाच पाहिजे, पण सत्तेचं व्यसन हा सुद्धा एक अंमली प्रकारच आहे। अगदी बाजार उद्यान समित्यांपासून लोकसभेपर्यंत माझ्याच अंमलाखाली पाहिजे हा सुद्धा एक अंमली प्रकारच आहे। आणि ह्या अंमली प्रकाराचा बंदोबस्त कोण करणार, कोणी करायचा? आज ज्या पद्धतीने एक एक प्रकार चाललेले आहेत, त्या वाटेल ते कर। आता झालं, पुढच्या महिन्यात तुमच्या आशीर्वादाने ह्या आपल्या हक्काच्या सरकारला 2 वर्ष पूर्ण होतील। अनेक प्रयत्न केले, फोडण्याचे प्रयत्न केले, पाडण्याचे प्रयत्न केले, मी तर आज सुद्धा सांगतो, हिम्मत असेल तर पाडून दाखवा, आज पण सांगतो मी।
पूरे दिन की सियासी गतिविधियां ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुलाकातों में ही सिमटी रही। अभी तक राजभवन की भूमिका सामने नहीं आई। वही सब कि किसके पास कितना समर्थन है, किसके दल को विधायक दल की मान्यता मिलेगी। गोदी मीडिया के लिए इस कहानी का कोई खलनायक नहीं है, एक ही नायक है जो उद्धव की सरकार गिरने के बाद सामने आएगा। तब तक सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, जैसे अपने आप इतने सारे विधायक सूरत पहुंच गए हैं, अपने आप चैनलों पर जानकार समझाने लगे हैं कि कुछ विधायकों के इस्तीफा देते ही सदन की क्षमता घट जाएगी, बाद में उन्हें राज्यपाल मनोनीत कर देंगे। इस तरह से जिस पार्टी की सरकार बन जाएगी उसका नाम बीजेपी होगा। यहां हम दल बदल कानून के प्रावधानों पर कुछ समय बर्बाद कर सकते थे, लेकिन भारत की राजनीति में यह कानून न तो दल बदल करने वालों को कानूनी रूप से डराता है, न ही नैतिक रूप से शर्मिंदा करता है। इस कानून के रहते हुए भी दल बदल के रास्ते निकाल लिए गए हैं। 3 बजते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल इंतजार करने की बात करने लग जाते।
ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो स्थिति है वो अधिवेशन में होती है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाओ, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है ऐसा मैं नहीं मानता। अधिवेशन 18 जुलाई से है, देखते क्या होता है।
इस बयान का क्या मतलब है कि बीजेपी प्रस्ताव नहीं देगी, सरकार बनाने के खेल से दूर रहेगी? देर शाम तक संजय राउत के बयान से लगने लगा कि बाजी हाथ से निकलती जा रही है।
हमारे लोग वहां गए थे, दो इतना शिंदे जी से बातचीत हो गई, इतना शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं जो बातें नितिन नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे।
मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना ताकतवर पार्टी के रूप में गिनी जाती है, उसे तोड़ देना कोई सामान्य घटना नहीं। उद्धव ठाकरे के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती है कि उनके पिता की बनाई पार्टी किसी और के पास चली गई। पहले भी शिवसेना से नेता दूसरे दलों में गए हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो किया वो काफी अलग है। पूजा भारद्वाज खबर देने लगी कि शिवसेना शाम से ही पूरे राज्य में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रही है।
एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। इतने कद्दावर नेता हैं, इतने सालों से पार्टी को संभाला है, संकट से बचाया है, फिर ऐसा क्यों? तो आप गद्दार क्यों कह रहे हैं?
ऐसा माहौल गद्दारी है ना
हुए हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा होगा उनको? आप लोग जमीन पे काम करते हैं,
कुछ भी हो जाए लेकिन शिवसेना छोड़ना ये बात ही नहीं होगी। कुछ भी हो जाए पक्ष में, पक्ष का कुछ होएगा, कुछ मालूम उनका कुछ रहेगा, फिर भी शिवसेना छोड़ना माननीय मुख्यमंत्री जी के पीठ में ये करना, ये गद्दारी है। हमारे लिए तो गद्दारी है, हम शिवसैनिक है और शिवसेना के लिए गद्दारी है।
शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, शिवसैनिक क्या चाहते हैं?
हमारे बड़े नेता इसका जवाब देंगे।
आप लोग क्यों इकट्ठा है यहाँ पे?
और पूरी महाराष्ट्र की जनता है वो उद्धव साहब के साथ है। महाराष्ट्र की जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी साथ ही रहना चाहिए।
इतनी बड़ी संख्या में अगर सहयोगी उनके साथ गए हैं तो शिवसैनिक अभी अपना अस्तित्व शिवसेना का कहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं जमीन पर?
शिवसेना तो जहाँ है वही रहेगा, शिवसेना को कुछ हिला नहीं दे सकते, कोई किधर भी जाए वो गए हुए
लेके जाया गया है, लेके जाया गया है जबरदस्ती है, वो गए हुए नहीं है।
भाजपा षड्यंत्र है, भाजपा अनेक तरीकों से महाराष्ट्र की और मुंबई की सत्ता हाथ में लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, अनेक कोशिशों में आप सफल रहे फिर भी वो हाथ पैर मारने की और कोशिश कर रहे हैं।
एक दूसरे से मिलने की खबरें बहुत हैं, बताने के लिए समय कम। क्या इन नेताओं के पास अब मिलना ही बच गया है या बचाने के लिए सरकार भी बची हुई है या वह जा चुकी है? देश का टॉपिक बदल गया है। महाराष्ट्र की सरकार बच गई है या गिर गई है? जो गिरा रहे हैं उन्हें ही पता है, जो बचा रहे हैं उन्हें बाद में पता चलेगा। ब्रेक ले लीजिए।
यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का साझा उम्मीदवार घोषित करने के बाद एनडीए ने भी राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नेता रही झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और इसके अलावा वहां बीजेपी विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज एनडीए के घटक दलों के साथ विचार विमर्श के आधार पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई गई। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 29 जून आखिरी तारीख है और 18 जुलाई को चुनाव होना है। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया।
एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रैरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट कॉमर्स एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट के गवर्नर रहीं, तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गईं उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है, इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा, यही घोषणा मुझे करनी थी।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।